आगे फिर कुछ बातें इन्हीं की, आयत 95, सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, अभी ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे, या खा रहे हैं, मुजारे है मारूफ, दोनों में देख लीजिए। कब, इज़न कलब तुम इलेहिम, जब तुम उनकी तरफ लौट कर जाओगे, क्यों, ली तो रिदू अनहुम, ताकि आप इनसे चश्म पोशी कर लें, यानी आप इनसे सरफे नज़र कर लें, आप इनको ओवरलुक कर दें, इनकी तरफ ना देखें, इनको इग्नोर करें, इनको बुरा भला ना कहें ना आने पे। तो क्या हुआ, फारिदू अनहुम, तो ठीक है आप इनसे राज बरतें, इन ना हम रेज सुन, ये नापाक लोग हैं, बमा वाहम जहन्नम, और इनका ठिकाना आग है, जजाम बिमा कान यकसिबून, बदला इसका जो कमाई ये कर रहे थे। ये देखिए अब अल्लाह ताला अपने नबी को किस तरह से तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ झूठे बहाने नहीं करेंगे। पहली आयत क्या थी, फयात अजीरून, सिर्फ उजर, ये पहला स्टेप होता है। लिखिएगा, जब कोई किसी नेकी से रुकता है ना, तो शुरू में सिर्फ उजर बांधता है, फिर उसके बाद अपनी बात को सच्चा करने के लिए सयहलिफून, कस्में भी खाने लगते हैं, झूठी कस्में खा रहे थे, क्या कि हमने ये ऐसा नहीं किया, आपको क्या बताएं, हमारी मजबूरियां कितनी हैं, और पहले झूठ बोला, अब इस झूठ को छुपाने के लिए कसम खाई। सूरत बकरा में हम पढ़ चुके मुनाफिक की एक आदत, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखे देते हैं, तो वो धोखा था इनका जो उजर था, और अब यखलिफून क्या है, यकज़िबून, वहाँ पढ़ी थी बात कि ये झूठे होते हैं, किस बिन की आदत है, यानी ये झूठ बोल के अपनी कस्मों को सच्चा करने लगते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं कि आप इनसे एराज कीजिए, आप इनकी बातों पे बुरा ना मानिए, इनको आप जाने दें। देखिए अपने बच्चे को समझाने के माँ के दो तीन तरीके होते हैं ना, एक ये कि थप्पड़ों पे थप्पड़ मारती जाए, बच्चे ढीठ हो जाएंगे, और दूसरा ये कि आप चुप कर जाएं। किसी ने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज भेजा, स्लाइड भेजी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों से जो वर्स्ट किस्म का एटीट्यूड था ना, गुस्से में आता है ना गुस्सा, ज़िंदगी में इंसानों को भी आता है, शोहरों को भी आता है, बीवियों को भी आता है, नबी सल्लम के गुस्से का बदतरीन इजहार अपनी बीवियों से क्या था, खामोश हो जाते थे, और कौन है वो मर्द जो चीखते और चिल्लाते और चिंगाड़ते, वो सिर्फ इस बात का इजहार करते ना कि हम तुम पे गालिब हैं। तो याद रखिए, गुस्से में किसी इंसान का असल खुलता है कि वो कैसा है, किस तरह का है। तो कभी भी अपने आप को कंट्रोल से बाहर ना करें, जब अल्लाह सुबहाना ताला कोई ऐसा मौका ले आए तो खामोश हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं, फारिदुन हुम, आप इनसे मुँह फेर लें, ये बड़ा इंतकाम होता है। और आप माएँ हैं ना, अपने बच्चों को ढीठ बनाने की बजाय सेंसिटिव बनाएं। हम बोल बोल के गुस्सा कर करके सबके बीच में उनकी बुराइयां कर करके उनको डीट कर देते हैं। आप उनको ऐसे करें कि आपकी आंख का इशारा समझ के वो बेचैन हो जाएं कि मेरी माँ जो है वो इस वक्त जो बात कर रही है वो मेरे लिए इशारा भी बहुत बड़ी बात है। खामोशी में बहुत ताकत है, बोलने वालों के खिलाफ बंदा दिल में बोल रहा होता है, शोहर चीख रहा है तो बीवी दिल में बोल रही है कि अब मैं क्या करूँ, मैं बोलूँगी तो लड़ाई होगी, तुम भी ऐसे तुम भी ऐसे, जो मुझे कह रहे हो तुम भी हो। लेकिन एक दफ़ा शोहर खामोश होके तो देखे, अभी भी क्या करेगी, खामोश तो नहीं रहेगी ना, उसका अंदर बोलेगा, फिर ज़मीर जागता है। हम लोगों की अना भड़का देते हैं बाज़ दफ़ा तबलीग करते हुए, तबलीग के अंदर अना को नहीं उभारना, लोगों के ज़मीर को जगाइए, क्योंकि अना जो है ना ये सोया हुआ शेर है, सोया ही रहे तो अच्छा है, जिस दिन जाग जाता है ना फिर ईगो का शिकार करके बंदे को उसका भी नुकसान करवा देता है, और वो कहता है जो भी है फिर मैं खुद भी बुरा बनूंगा, तुम्हें भी मारूंगा, खुद भी सूली पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं तो करूंगा। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप इनसे ज़्यादा बातें ना पूछें, बस एराज करें। यहाँ देखिए फारिदू है ना, तो आइन रात द्वाद आरादा अन, यहाँ आगे अन आ रहा है ना, तो जब आरादा के बाद अन लग जाता है तो मुँह मोड़ना और फेरना, एराज करना और दरगुजर करना इसका मानी होता है। और मा वाह हम, इसम ज़र्फ़ है क़याम की जगह, मा वाह जन्नत का नाम भी है। अल्लाह सुब्हान तआला इनकी मज़ीद बातें अपने नबी को बताते हैं आयत 96 में, यहलिफून लकुम लितरदौ अनहुम, ये कस्में खाएंगे और खा रहे हैं ऐ मुसलमानों, क्यों, ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। ये थी मुनाफिकों की दुनियादारी की मजबूरी। मुनाफिक जो होता है ना, ये असल में दुनियादार होता है। इस लिहाज से इसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है सबको खुश रखना। एक माशरे के अंदर सबका इकट्ठे रहना सहना था, औस और खजरज के अंदर इनकी रिश्तेदारियाँ थी। ऐसे माहौल में वो ये समझते थे कि अगर मुसलमानों के दिल इनकी तरफ से साफ ना हुए तो वो इस माशरे के अंदर एक अछूत की तरह बन जाएंगे। इसलिए वो मुसलमानों में अपना एतमाद बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। मुलाकातें करते, मजबूरियां बयान करते, कभी उनके सामने कस्में खाकर अपने इखलास का यकीन दिलाते कि बस अब हमसे खुश हो जाओ, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। इसलिए फ़ाइन तर दो अनहुम, तो ठीक है अगर आप इनसे राज़ी हो भी जाओ। फ़ाइनल्लाफ़ासिन, अल्लाह बिल्कुल राज़ी नहीं होता नाफरमान कौम से। हाईलाइट करिए ज़रा इस आयत को। छोड़ दें मुनाफिकों को और छोड़ दीजिए ग़ज़वे तबूक को और सूरह तौबा को, अपने हाल पे ले आइए इस आयत को, बिल्कुल अपने ऊपर लेके आइए। क्या हम भी दूसरों को बाज़ दफ़ा खुश नहीं करना चाहते? उनकी गलत चीज़ों में शामिल होते हैं किस सोच से कि फ़ाइन तरदवन हो, ये मुझसे खुश हो जाए, ये रिश्तेदार, ये ख़ानदान, ये मेरी दोस्तें, ये मेरे मोहल्ले वाले, ये खुश हो जाए। दिन में इतनी दफ़ा लोगों को खुश करने के लिए खुशियाँ देने वाले को नाराज़ कर देते हैं। सूरत नजम में आता है कि अल्लदी यदहक वाबका, वो ज़ात है, यदहक व यबका कुछ इस तरह, यानी अल्लाह वो ज़ात है जो हंसाती भी है और रुलाती भी है। खुशियाँ उसके हाथ में है और हम खुशियों में सबको खुश करते हैं, खुशियाँ देने वाले को भूल जाते हैं। अल्लाह कहता है तुम इनको कर लो खुश, मैं फिर भी नहीं होगा। अल्लाह किससे नहीं खुश होता? कौमिल फासिकीन, नाफरमान कौम से अल्लाह खुश नहीं हो सकता। अल्लाह का ये टेस्ट ही नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला का टेस्ट बड़ा आला है, वो बहुत अच्छी चीज़ों से खुश होता है। और अगर आप यहाँ देखें ना, तो स्टेप्स हैं, पहले क्या था, या तज़ीरून, हाँ, फिर दूसरे स्टेप पे आ गया यहलिफून, और अब क्या आ गया लितरदवनहुम। मुनाफिक की स्टेप बाय स्टेप जो कोशिश है ना, वो यहाँ बयान हो रही है कि मुनाफिक अल्लाह को खुश करने से ज़्यादा किसको खुश करे? दुनिया वालों को खुश करना चाहता है, लोगों को खुश करना चाहता है। तो अल्लाह ने साफ बता दिया। तो मेरे और आपके लिए फिर इसमें अमल क्या है कि लोगों को खुश करना, लोगों की खुशी सेकेंडरी है, सानवी हैसियत रखती है। ये मोमिन की प्रायोरिटी नहीं हो सकती कि लोग खुश रहें। मुनाफिक जो होता है ना, पीपल कॉन्शियस होता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों को खुश करना चाहता, अल्लाह की परवाह नहीं करता। हालांकि हकीकत पता क्या है, जो अल्लाह को खुश करेगा दुनिया वाले भी उससे खुश हो जाएंगे। और इसका ऑपोजिट, जो लोगों को खुश करेगा अल्लाह उससे ज़रूरी नहीं कि खुश हो। ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो। और आप याद रखिए कि ये जो गंदगी है ना निफाक की, ये इल्म के पानी से धुलती है, और मुनाफिक का इल्म की महफिल में दिल नहीं लगता। ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से कंट्रोल है, बस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। जैसे अब आपका दिल नहीं लगता ना किसी गाने बजाने की महफिल में, आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है, बेहयाई उरियानी में आपका दिल घटता है ना, लोग खुश होते हैं, आपको लगता है कि छत ही ना गिर जाए ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से सोच बदल जाती है। हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि इवन पता भी चल जाए कि दूसरा बंदा झूठा उजर बोल रहा है, तो ज़्यादा ना बोले। कोई कहता है ना मैं इसलिए नहीं आया, बस अल्लाह फिर तुम्हारे हाल को, एक लफ्ज़ कह दे, अल्लाह नोज दी बेस्ट, अल्लाह जाने तुम जानो, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर एक और चीज़ ये है कि जो लाइल्म शख्स होता है ना, हमेशा अपने सिवा दूसरों को मुनाफिक समझता है। वो कहता है कि मैं कैसे मुनाफिक हो सकता हूँ, मैं तो इतना अक्लमंद हूँ, इतना इंटेलेक्चुअल हूँ। लेकिन इल्म जो है ना, बंदे को अपने अंदर की मुनाफ़त को पहचानने में मदद करता है। जितना इल्म आता जाएगा ना, आपको अपने गुनाह ज़्यादा क्लियर दिखते जाएंगे। यहाँ तक तो जनरल बात थी ना उज़र बहानों की। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अरबियों की बात की है। अरबी कौन थे ये थोड़ा सा समझ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का में थे, तो आपके इर्द गिर्द मुशरिकीन मक्का थे जो बड़े ज़्यादा बाप दादा की रिवायात से मोहब्बत करते थे। मदीना में आ गए तो मदीना में दो गिरोह थे आपके सामने, एक वही जो मुशरिकीन थे औसो खजरज के नाम पे, और दूसरे यहूद थे। लेकिन मदीना के लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैस ले ही रहे थे, सोहबत थी, हर जुमे को खुतबा सुनते, रात दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी महफिलों से मदद उठा लेते। उनके अंदर जल्दी तब्दीली आई। लेकिन मदीना के इर्द गिर्द रहने वाली जो बस्तियां थी ना, जंगलों में रहने वाले लोग, उनके पास तालीम और ताल्लुम के ज़्यादा मौके नहीं थे। फितरी तौर पर ये लोग भी ज़ाहिर के तौहीद को ही पसंद करते, लेकिन इतना अरसा जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द बुत परस्ती देखी तो ऐसे लोग जो थे इनके अंदर मुनाफ़त आ गई। यहाँ आप देखिए कि 97 से अगली चंद आयतों में हम अरबियों की मुख्तलिफ किस्मों का तذکرہ पढ़ेंगे। सारी इकट्ठी पढ़ के फिर इंशाल्लाह हम इस पे बात कर लेंगे। आयत 97, अल आराबु अशद्दु कुफ्रम व निफाका, ये बद्दू कुफर और निफाक में ज़्यादा सख्त है। वह अजदरु, और ज़्यादा लायक हैं इस बात के कि अल्लाह यालमु हुदूद मान ज़ल्लल्लाहु अला रसूलिही, कि ना वाकिफ हों उस चीज़ की हदूद से जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अरबियों की पहली किस्म आप लिख सकते हैं इस आयत के साथ, कौन थे? अशद्दु कुफ्रम व निफाकन, कुफर और निफाक में ज़्यादा शदीद है। और अजदरु, ज़्यादा लायक है, जिदर से है ये, यानी दीवार के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। मुराद ये कि ये बहुत एक्सट्रीम पे होते हैं, उजड़ कहते हैं ना उर्दू में हम, जिस तरह बस वही लफ्ज़ समझ लीजिए। ये ज़्यादा लायक है इस बात के कि अल्लाह यालमो, ना इल्म हासिल करें, ना वाकिफ़ हों किस चीज़ से, हुदूद अमान ज़ल्लल्लाहु अला रसूली, उन चीज़ों की हदों को जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की। यानी आप देखिए इतनी बड़ी ये हकीकत है, मैंने इसको बज़ दफ़ा ऑब्ज़र्व भी किया किसी में, कि जितना कोई अनपढ़ होता है ना उसको शरीयत की हदें भी नहीं पता होती। बिलीव मी, यानी एक छोटी सी मिसाल जो बचपन से दिमाग में है, कि हमारे पास गांव से फैमिलीज आके रहा करती थी घर के पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे, इस तरह की बाज़ दफ़ा गंदगी उनके अंदर देखने में आई, और जब खोला गया तो कहती बाजी गांव में तो आम है, एक ही औरत है वो चचे की भी बीवी होती है भतीजे की भी होती है। बिलीव मी, इस तरह के हालात है, एक औरत दो भाइयों की भी बीवी बनती है। हदूद अमान जल्लाह, उनको पता ही नहीं है हदें, बाजी ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। और बिलीव मी कि एक मर्द अपनी बीवी को इतने गलत ताल्लुक में किसी अपने भाई के बेटे से देखे और कहते बाजी रहन दो, ऐसी आदत है, चल रोटी पका। कैन यू बिलीव? यानी सिर्फ ये या आपको मैंने बिल्कुल एक टिप दी, मिसाल दी कि अल्लाह यालम हुदूद अमान जलाल्ला। देखिए दुनिया में जो बेहयाई और ईरानी फैली है ना, ये दो बहुत बड़े सोर्सेज से फैली है, एक फैशन और मज़हब के नाम पे, यानी जो लोग फैशनेबल हैं वो अच्छे गंदे कपड़े पहन लेते हैं, या कल्चर के नाम पे कल्चरल शो हैं या कुछ और है, और जो दूसरे लोग हैं ना वो मज़हब के नाम पे, कुछ मज़हब है उनके अंदर न्यूडिटी है, जैसे कि हमने सूरह अल-अराफ़ में पढ़ लिया। लेकिन जो बेहूदगी फैली है ना, गंदगी और यानी उसमें एक जाहिल औरतों के वजह से भी बहुत फैली है। कभी आप काम करने वाली औरतों के लिबास देखें, उनको होश ही नहीं होती दुपट्टा है कि नहीं है। मासियाँ बेचारी जाहिल, ना दुनिया मिली ना आखरत मिली। तो यहाँ इस चीज़ की तरफ इशारा है कि ये लोग अक्खड़ होते हैं, उजाड़ होते हैं। अमूमन ऐसे लोग जानवरों के बीच में रहते हैं, और इंसान की एक तबीयत का हिस्सा समझ लीजिए कि जिस चीज़ के बीच में रहेगा ना वैसा हो जाएगा। जानवरों में रहने वाले जानवर ही बन जाते हैं। मुबहम, ऊंची बोलना, दूर से बोलना, चीखना, चिल्लाना, जानवरों की तरह वक्त ज़ाया करना, इधर से उठ उस दरवाजे से। बास खवातीन की सिर्फ गांव में आदत होती है, उसके घर से उठी, उधर से, उधर से उठी, उधर से उठी, और वो बीच मालों की तरह उधर की लड़ाइयाँ, उधर किसी के रिश्ते जोड़ने करने। तो ऐसे लोग इल्म से चूके दूर होते हैं, इनका इखलाक और किरदार शहरियों के मुकाबले में कम होता है, सेंसिटिव नहीं रहता बंदा, बाप दादा को फॉलो करते हैं और बस जो हुआ, बड़े बड़े डिजाइन पहनेंगे, गहरे गहरे रंग पहनेंगे, और खाने में भी मोटी मोटी चीजें लेंगे। यानी उनके अंदर वो सारी सिफात आ जाती, बुरी नहीं है, लेकिन उनके अंदर से सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। इसके बरक्स जितना बंदा दुनियावी लिहाज से पढ़ता है टू मच सेंसिटिव हो जाता है। बात भी करता है घर में बच्चा तो कहता है ऐसा बोलो नेबर्स में आवाज़ ना जाए। जो हमसाये होते हैं वो गाँव वाले वो कहते हैं जाती है तो जाने दो, घरों में तो आवाज़ें आती हैं, फ़र्क है ना। तो यहाँ असल में अल्लाह ताला ने एक किस्म जो बता दी कि वो क्या है कि ऐसे लोग जो हैं ये अखड़ हो जाते हैं, उजड़ हो जाते हैं, इनको अल्लाह की बात ज़्यादा समझ नहीं आती, और ऐसी बातों को बुनियाद बनाकर फिर ये दीन के अगर कोई मौके इनको मिल भी जाए तो उसे फ़ायदा नहीं उठाते। और फिर उसके बाद इसका लाजमी नतीजा क्या होता है, वो इनका निफाक है। जो लोग मदीना के अतराफ में थे ना, शुरू में इनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने इस्लाम को एक उभरती हुई ताकत बनते हुए देखा तो मरूब हुए, ठीक है। यानी आप ये भी तो समझे कि इनमें इस्लाम कैसे आना था, क्या आना था, चूंकि इर्द गिर्द मदीना की बातें खबरें आती जाती थी, इनको पता चला कि अल्लाह के नबी आए हैं, सहाबा आए हैं, इनके दिलों पर रोब तारी हुआ। जूं ही इस्लाम का रोब इन पर तारी हुआ ना, तो अब ये क्या करते रहते थे, मौके की तलाश, जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि देखो ऊंट किस करवट बैठता है, इनका ये हाल था। जब इस्लाम और कुफर की जंग होती तो जिसका पल्ला भारी होता ना ये बद्दू उधर चले जाते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आज भी गरीब देहातियों का वोट 100-100 रुपये में जमातें खरीद लेती हैं। सुनी हुई है ना बात कि 100 रुपया दो, क्योंकि इनको तो 100 रुपये से लेना है, इनको क्या लगे कि मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है या नून लीग है या कौन सी, इनकी बला से इनको 100 का नोट चाहिए। तो ये बिल्कुल इसी तरह से करते थे, शुरू में इनके साथ यही थे। बहुत थोड़े लोग इनमें ऐसे थे जो दीन को हक समझ कर ईमान लाए। इससे नुकसान क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे इस्लाम में दाखिल हो गए कि दिलों में इस्लाम कोई नहीं था, सिर्फ मरूबियत थी या किसी जगह माली फ़ायदों का हसूल था। और ऐसे हालात में जाहरी बात है कि निफाक दिल में आएगा। ऐसे ही लोगों की बात है कि जब इनको अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करने को कहा जाता है तो क्या करते हैं, आयत 98, वमिनल आराबी मन यत्तखिज़ु मा युन्फिकु मग़रमा। और इन बद्दुओं में ऐसे लोग भी हैं कि जो कुछ इन्हें खर्च करना पड़ता है इसे तावान समझते हैं। मग़रमा का रूट क्या होगा, गैन रामी गुरामा गरम तौक को कहते हैं ना, यानी मगरमा से मुराद तावान है। तावान क्या होता है, जिसको भत्ता भी कहते हैं, कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी से ज़बरदस्ती वसूल की जाए। अब होता क्या था कि जब ये अरबियों में से कुछ लोग मुसलमान हुए तो ज़ाहिर है ज़कात इनको देनी पड़ती थी, उशर इनसे मांगा जाता था, कोई भी जो इस्लामी मुल्क में रहते हुए माली चीज़ें इनसे मांगनी थी तो ये लोग इसको बोझ समझते थे, कहते थे कि हम ये नहीं देंगे। और हाल इनके दिल का क्या था, वह यतरब्बस बिकुम उद्दवाइर, ये तो मंतजर हैं कि तुम लोगों पर कोई गर्दिशे ज़माना आए, नौज़ुबिल्ला। यानी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि गर्दिशे ज़माना के बायस मुसलमानों के ऐसे हालात बने कि अब मदीना से इस्लामी हुकूमत ख़त्म हो और ये इन पाबंदियों से आज़ाद हो जाएं। अल्लाह कहते हैं इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि अलैहिम दायरतुस्सौ, असल में बुरी गर्दिश खुद इनके ऊपर पड़ने वाली है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। यानी इनकी ये जो मुनाफ़कत खुद इनके दिलों का रोग बन रही है और इनके दिलों को बंद कर रही है। लफ्ज़ दवायर और दायरा को समझ लीजिए, उर्दू में बोलते हैं ज़माने की गर्दिश, ये सारी चीज़ें, ये वही लफ्ज़ है। दवायर दायरतुन की जमा है, वो बुरी हालत जो अच्छे दिनों के बाद आए। यानी आज कोई दौलतमंद है कल गुर्बत आ जाए, आज सेहत है कल बीमारी आ जाए, हालात का बदलना, और उर्दू में इसको गर्दिशे अय्याम भी कहते हैं। क्या थी उनकी नज़र में दायरा तो 100 मुसलमानों के लिए, नंबर एक के मुशरिकीन ही इनका काम तमाम कर दें, ना मुसलमान रहे ना हमें सताएं और ना हमें गिल्ट हो कि हम ये नहीं कर रहे हम वो नहीं कर रहे। और दूसरी गर्दिश याम जिसकी इंतज़ार कर रहे थे वो क्या था कि अल्लाह के नबी का इंतकाल ही हो जाए, ना ये रहें ना इनकी जमात बने ना ये हमें आके सताएं और खपाएं। अल्लाह कह रहे तुम्हारी दोनों बातें नहीं पूरी होनी, तुम इस तरह की बातें करके अपने दिल को और ज़्यादा बोझल कर रहे हो। ऐसी बातें जो होती हैं ये सिर्फ अपने दिल वाले ही को तकलीफ़ देती हैं। यहाँ से क्या पता चलता है कि जब तक इल्म नहीं आता बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को तावान समझता है, बोझ समझता है, देहाती मुनाफिक जो होते हैं ना, वो दीन पर खर्च होने वाली चीज़ को अपने लिए बोझ समझते हैं, क्योंकि माल की मोहब्बत ज़्यादा होती है। देखिए जो दुनियादार होते हैं ना, यानी दुनियावी पढ़े लिखे लोग, उनको पता होता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती। एक आलू भी लेके आएंगे स्टोर से तो उसके भी पैसे देंगे ना। इसके बरक्स देहातों में अमूमी बात है, उसकी चीज़ उठा ली, अपना ही है। एक तो मोहब्बत और बेतकल्फी का भी नाम होता है। किसी के खेत से गए मूलियाँ तोड़ के ले आए, किसी के गए तो उसके घर से आते हुए कोई चीज़ उठा ली। चोरी चकारी का भी कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं समझा जाता। अब आप ये दो माइंड मैप लाएं, एक वो किरदार है कैसे माहौल में पल रहा है कि जिसकी मर्जी उठा ली, जिसकी रख दी, कभी आपकी भी कोई ले गया तो आप भी माइंड नहीं करते, चलो अभी मैं भी ले आता हूँ, ये भी मेरी ले गए, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो सोच डिवेलप होती है वो क्या है कि माल नहीं लगाना। अक्सर मैंने ये बात सुनी भी है इसी तरह के ख़ानदान जो आते हैं देहातों से, वो कहते हैं कि बाजी हमारे गांव में पैसों के बदले में नहीं लोग ज़्यादा चीज़ खरीदते। किसी का कोई ग्रोसरी स्टोर था छोटा सा, तो वो कहती थी कि कई लोग जो है ना, वो मिसाल है कि सब्ज़ी खरीदने आते हैं, अब वो गरीबों के पास पैसे नहीं होते, तो वो औरत क्या करती है, घर से एक आटे का डब्बा भर के ना, तो बच्चे को देती है, जाओ दुकानदार को कह दो कि ये आटा ले लो तो इसके बदले मुझे दो आलू दे दो। तो कहने लगी कि बाजी ये आम बात है, क्योंकि खातों में पैसे नहीं होते तो वो चीज़ों को उल्टम पुल्टम कर लेते हैं। अब जब ऐसी माहौल में परवरिश होगी तो आप देखिए कि फिर उस वक्त ऐसे बंदे को अगर कभी कहीं नोट देना पड़े, पैसा देना पड़े, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी ना। ये मतलब है इधर कि दीन के ऊपर खर्च करने वाले भी वही लोग होते हैं जो दुनिया पे खर्च करते हैं। उनको पता है दुनिया पे खर्च होता है, 1 घंटा कहीं जाते हैं तो कुछ पैसे मिलते हैं ना, तो वो अगर कहीं खर्च भी करेंगे तो हमें लगाने पड़ेंगे, तो इनको मुश्किल लगता था। लेकिन याद रखिए हमेशा सारे लोग ऐसे नहीं होते। और रिवायत में एक बड़ी दिलचस्प रिवायत मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा एक अराबी ने कोई चीज़ तोहफे में दी, गिफ्ट देते हैं ना जैसे कोई किसी को, उसने दे दी। जब तक अल्लाह के नबी ने जवाब में उससे बेहतर चीज़ उसको नहीं दी, उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने अराबियों से तोहफे लेने छोड़ दिए। कभी आपने कोई गांव की शादी भी तो देखी होगी ना, एक साथ बैठा होता है लिखने वाला, 50, 51, 101, फिर वो पिछला खाता खोल लेते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग ये क्यों लिखते हैं, वो इसलिए खुद लिखते हैं कि हमारे बच्चे की शादी पे इनको क्या दिया था। अब नोट की वैल्यू चाहे बढ़ गई हो, डॉलर 4 रुपए से होके हो सकता है 100 रुपए का पहुंच गया हो, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे घर शादी पे 101 दिया था, तो अब तुमने हमें 50 नहीं देने। लेन देन करते हैं ना, आज भी लोग ऐसे करते हैं, अच्छा देखो हमारी शादी पे क्या दे गए थे। जहालत है। बड़े लोगों को मैंने देखे लिखते होते हैं पूरी पूरी लिस्टें शादियों के तोहफे, जब तक लिख ना लें क्योंकि उनको वापस करने उतने देने, तो ये तोहफे की सेंस नहीं होती। बस मुझे याद है कि वो एक बारात का मंजर आता है कि दूल्हा बैठता है, उसके साथ एक मुंशी साहब बैठे होते हैं अकाउंटेंट, वो जो भी देता है ना, वो पहले लोग ना ऐसे नोट पकड़ के हाथ में खड़े रहते हैं, भाई दे दो जल्द, नहीं लिखाना है। तो वो जब वो आ वीडियो में वो सबूत बन जाता है कि देख लो हमने ये तुम्हें नोट दिया था। बस लोग यानी घर वाले को ढूंढ रहे होते हैं कि उसके सामने देंगे, क्योंकि बाद में पूछना भी, आए थे देख के कुछ नहीं गए। और वो हमारा एक बाबा था, बड़ा मज़े की बातें करता था, गांव से आया था, उससे मैंने उससे ये सारी बातें मैंने ज़्यादा बाबा जी से सीखी हुई हैं। बड़ा ही वो यूनिवर्सल बाबा था। तो कहीं जाता था ना गांव में या कहीं शादी में, तो कहता है बाजी 8 दिन रह के आना है, डंग टपाने हैं, किराया पड़ा ला के चले आना, तो 8 दिन की रोटी खा के आवाँगे तो खर्चा पूरा होएगा। देखिए उन गरीबों की कहानी है, यानी जब भी इंसान इस तरह की बातें करता है तो एक तरफ तो मासूमियत भी होती है, लेकिन दिल छोटे हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं लोग। हर शादी के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि उसने मुझे ये नहीं दिया था, मैंने उसको वो दिया था, ये दिया था। तो इस्लाम जो है ऐसी चीज़ों को अच्छा नहीं समझता। तो बिल्कुल यही बात इधर रखी गई है कि ऐसे लोग अल्लाह के रास्तों में खर्च करने पे खुश नहीं होते, और उनको इन चीज़ों पे लगाकर दिल की खुशी नहीं मिलती। अब ये बातें सुनकर दिल में आता है कि अच्छा जी सारे गांव वाले ऐसे हैं, हरगिज़ भी नहीं। अल्लाह का कानून देखिए कि उसको अपने बंदों का पता होता है ना, तो वो अपने बंदों की अगर कोई खामी का तذکرہ कर दे तो उनकी खूबियों का भी करता है। और इन मुनाफिकों से भी मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ था। कबीला ख्वाजन जो था ग़ज़वा हुनैन के तذکرے में आपने सुना था, ये सारे अरबी थे, बद्दू थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कातिलाना हमले किए देहातियों ने बहुत सारे। तो ये सारी बातें अगर जिक्र ना की जाती तो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें फिर पूरी तरह खुल के सामने नहीं आती। और अल्लाह ताला ने यहाँ ये भी बता दिया कि ये वो लोग हैं जो कुर्बानियाँ दिए बगैर अपने काम लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि कुछ काम मिल जाए लेकिन उसके ऊपर यानी अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते।
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم